ับจะเล็กนิ
ดอะไร
ดูสมัสติอมวิษณุกิสันตันมาลาบันรหีคือมาลาฮุตีเอนะทุมรุดรมาลาเคบีมันเกี่ยวจานติโอรุดรมาลาเคมันเกี่ยหีวิเจมาลาเมบาดเมฟิรโอยจัติบาปเคตีเฮरुद्रमाला के मणके तो हो लेकिन विकार में जाना महापाप है। इसके कारण भारत में क्या दशा हो गई है। ये साधु संतादि सभी भक्त मार्ग में भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग का एक भी साधु संत नहीं है। ज्ञान तो एक बाप को ही है, ज्ञान माना जानकारी समझ है, बुद्धिमानों की बुद्धि वो कहा जाता है। और वो लोग गुरु लोग तो भक्ति की हैं, भक्ति माना ही दुर्गति है। 2000 साल से भक्ति चलती चली आई है और दुनिया दुर्गति को पाती चली आई है। भक्ति में क्या करते हैं, उन गुरुओं के चरण धो करके पीते हैं। ये रीति रसम कहां से पड़ती है, है? संगम युग से सारी रीति रसम रिवाज है। जो ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हैं, जो पक्के देवी देवता सनातन धर्म के नहीं हैं, उनके द्वारा ये परंपराएं पड़ती हैं। चरण बुद्धि रूपी कहे जाते हैं। इन साधु संत महात्माओं को भी भ्रष्टाचारी तो कहेंगे ना, कौन सा आचरण करते हैं जो भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं। वो भी भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करते हैं, पैदाइश ही कोष से होती है। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हमारी पैदाइश भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से हुई है। अगर वो ये बात समझें कि देवताएं कैसे श्रेष्ठाचारी हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करके संतान पैदा करते हैं और हम भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश होती है और भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने के कारण भ्रष्टाचारी है। अगर ये बात समझ जाए तो रिवॉल्यूशन हो जाए, क्रांति हो जाए। अभी तो इन गुरुओं की बड़ी राजाई है। आजकल तो दुनिया में देखो क्या हो रहा है, कोई किसी की मानता ही नहीं है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजा कोई है नहीं। वो क्रिश्चियन लोग पोप की भी नहीं मानते। पोप क्रिश्चियंस का बड़े से बड़ा गुरु होता है। सब देशों में प्रजातंत्र राज्य है। प्रजातंत्र राज्य का जो मुखिया प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं मानते। बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। और खुद पत्थर बुद्धि होने के कारण भगवान को भी पत्थर फेंककर में ठोंक दिया। समझते हैं भगवान ऐसे पत्थर बुद्धियों में भी आता होगा। थोड़ी सी माया की ठोकर लगे ऐसे ठिक्कर बुद्धि जो ज्ञान में से दख से टूट पड़ते ऐसे ठुक्कर बुद्धियों में भी परमात्मा बाप आता है। अरे इतना ऊंचते ऊंच बाप है तो ऊंचते ऊंच निश्चय बुद्धि में प्रवेश करेगा। यह घड़ी घड़ी जिनको अनिश्चय बुद्धि होता रहता है, अविश्वास पैदा होता रहता है, उनमें प्रवेश करेगा। अभी बाप सारी दुनिया को बदलते हैं। पत्थर बुद्धियों को पारस बनाते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि कलयुग से सतयुग कौन बनाते हैं। अगर जानते होते तो हर युग में भगवान को नहीं ठोक देते। कहते हैं कल्प कल्प भगवान आते हैं, हर युग में भगवान आते हैं। गीता में लिखा है संभवाम युग युग। तो चार युगों में चार अवतार होने चाहिए। अरे 24 अवतार कहां से ठोक दिए। इससे साबित होता है कि कोई को पता ही नहीं है इस सस्य रूपी मकान की जब दुर्दशा हो जाती है, मकान एकदम तमो प्रधान पुराना हो जाता है, तब ही इस सस्य का मालिक का आना होता है। और ये सृष्टि तमो प्रधान बनती ही कलयुग में। ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है, द्वापर में 8 कलाएं रह जाती हैं और कलयुग कलाहीन होता है। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है कि भगवान को किस युग में आकर के परिवर्तन करना होता है। अभी तुम बच्चे तो समझते हो कि भगवान कलयुग में आकर के ही सतयुग बनाते हैं। ये कलयुग है कलह कलेश का युग, झूठ खंड है ना। झूठ खंड को सच खंड कौन बनाते हैं। झूठा स्थाई रहता है या सच्चा स्थाई रहता है। सच्चा स्थाई रहता है, इसलिए सच्चे खंड भारत में ही होता है। भारत ही अविनाशी खंड है, और जो भी दुनिया के खंड हैं, चाहे अमेरिका है, क्रिश्चियन खंड, अफ्रीका अरब देश है, इस्लामी धर्म खंड, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, जो भी मुस्लिम खंड है, वो सब विनाशी है। इनकी कोई की भी 2500 वर्ष से पुरानी हिस्ट्री नहीं मिलती। 2500 वर्ष पहले भी ये समुद्र के गर्त में समाये हुए थे, और अभी भी एटम बमों का विस्फोट होगा तो ये सब धर्मखंड जो झूठे खंड हैं, झूठ मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, झूठे धर्म मनुष्य धर्म पिताओं के द्वारा धर्म की स्थापना हुई है इन खंडों में, ये सब खलास हो जाते। मनुष्यों ने गीता में लिख भी दिया है, असत्य का विनाश होता है और जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। धड़ाके से बोलते हैं ना सते विस्जते भावो, परंतु इसका अर्थ क्या है वो नहीं समझते। ये भारत खंड ही सच खंड था, और 100% सच खंड तो भारत खंड 100% झूठ खंड बनते ही भगवान बाप इसको परिवर्तन करने के लिए आ जाते। तो अब तुमको अभी इन बातों का पता है तो महावीर बनना चाहिए, क्योंकि तुम पक्के भारतवासी हो। आप देखो शादियों के लिए हाल बनाते हैं, उनको समझाओ ये जो धर्मशालाएं बनाते हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो और वहीं शादियां रचाते हो। ये मंदिर तो देवताओं की यादगार है, इन देवताओं की जो पूजा होती है, पूजा पवित्र की जाती है, जो आजकल के अपवित्र नेताएं हैं उनकी भी मूर्तियां बनती हैं, परंतु उनकी पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मूर्तियां तो वही पत्थर की है, परंतु देवात्माओं की मूर्तियों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनमें पवित्रता थी, और ये पवित्रता उनमें कहां से आई? बाप की याद से उनमें पवित्रता आई। बाप है एवर प्योर, एवर प्योर की याद से वो देवात्मा पवित्र बनी, तब उनकी पूजा होती है, और पवित्र बन करके मन बुद्धि से दुनिया में पवित्र वाइब्रेशन फैलाए, पवित्र वातावरण से, पवित्र वाइब्रेशन से दुनिया के 5 जड़ तत्व, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है, वो पवित्र बन गए, उनकी दृष्टि पवित्र बनी। एवर प्योर को याद करने से उनकी दृष्टि पवित्र बनी। इस को याद करते हैं, बुद्धि में मन में उनकी याद जरूर आती है, आंखों से जिसको देखते हैं उसकी याद जरूर आती है। आंखों के देखने से भी आत्मा का संबंध जुड़ता है। ऐसे ही और इंद्रियां भी हैं जिन इंद्रियों से संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आने से वो एवर प्योर की प्योरिटी की छाप लग जाती है। तो समझाओ कहां वो पवित्र देवताओं के मंदिर और कहां तुम वहां जाकर के शादियां रचाते हो अपवित्र बनाने के लिए। अपवित्र दुनिया रावण की दुनिया है और पवित्र दुनिया देवताओं की दुनिया है। देवताओं को मनुष्य से देवता बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा एवर प्योर है। तो ये देखो कैसा कंट्रास्ट, एक तरफ मंदिर में पूजा करते हैं और दूसरी तरफ वहीं शादियां रचाते हैं अपवित्र बनाने के लिए। बाप कहते हैं अब ये कोष घर बंद करो, बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेगी। अगर विकारी बने रहे तो जगत जीत बन नहीं सकते। जगत जीत बनेंगे नहीं तो बाप के प्यारे बच्चे कैसे कहे जाएंगे। जगत जीत बनना बड़ी मंजिल है, जो बाप को याद नहीं करते हैं तो फिर मुझते रहते हैं। बाबा को भूल जाते हैं। अरे ऐसे बाबा को थोड़े ही भूलना चाहिए, बल ग्रस्त व्यवहार में रहो। परंतु 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में रहो, 8 घंटा शरीर को आराम दो, शरीर की परवरिश करो और 8 घंटा जो दुनियावी धंधे हैं बाल बच्चों की परवरिश के लिए उसमें लगाओ। ये भी नहीं कहते हैं कि लौकिक दुनियादारी धंधा धोरी छोड़ दो और ग्रस्त व्यवहार को छोड़ दो। सन्यासियों मिसल एकदम छोड़ छाड़ के बाग खड़े हो, बाप तो कहते हैं धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। ऐसे ऐसे तुम सहज पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प के लिए सहज हो जाएगा। नहीं तो तुम भिख के लिए मार खाते रहेंगे। अभी आस्ते आस्ते हड्डियां नरम होती जाती है, तुम शिव शक्तियों की महिमा बढ़ती जाएगी तुम्हारी सेना है ना? शिव शक्तियों की बहुत बड़ी सेना हो जाएगी। फिर वो माया की सेना, माया रावण की सेना हार खा जाएगी। अभी दोनों सेनाएं हैं, माया रावण की भी सेना है और तुम शिव शक्तियों की भी सेना है। तुम पवित्र रहने के लिए लड़ाई लड़ती हो, बाप की याद से तुम्हारे में ताकत आ जाएगी। ये ताकत आ जाएगी। जो भी माया रावण की सेना के दुर्योधन दुशासन है उनसे मुकाबला करने की ताकत आ जाएगी। बाप को कहते ही है सर्वशक्तिवान। माया भी सर्वशक्तिवान है, परंतु आखिरी तुम बच्चों की विजय होगी। लोग समझते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी कर सकते हैं। मरी मक्खी को जिंदा कर सकते हैं, अरे भगवान बाप ऐसी कोई बाजीगरी नहीं करता। प्रकृति के नियम के बरखिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। बाप तो कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताने आता हूं, ये सीधा रास्ता है, पुरुषार्थ करने का सहज रास्ता है, निरंतर याद करने का ये सहज रास्ता है। शॉर्टकट रास्ता बताता हूं, इतना शॉर्टकट है। वो गुरु लोगों ने जो रास्ते बताए 2500 साल से बताते चले आए, मंजिल पूरी नहीं हुई, भगवान कोई को नहीं मिला। और तुम चपटी में भगवान बाप को पहचान लेते हो। 1000 साल ऋषियों मुनियों ने तपस्या की, न भगवान बाप को जाना और न नरक की दुनिया स्वर्ग बनी। और तुम तो थोड़े समय में ही, ज्यादा से ज्यादा कितने समय में, 100 साल के संगम युग में गारंटी से कहते हो कि हम नरक की दुनिया को श्रीमत पर स्वर्ग बनाएंगे। बाकी मैं ऐसे थोड़े ही कहता हूं कि मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। मुझे बुलाया है, मुर्दों को जिंदा करने के लिए बुलाया है। भक्ति मार्ग में कहते हैं और धर्म के लोगों की ये मान्यता है कि जो मरते जाते हैं वो कब्र दाखिल हो जाती है। जब कयामत का समय आवेगा तो अल्लाह मियां आकर के कब्र से जगावेंगे। मानो मुर्दों को जिंदा कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो ये सारी दुनिया कब्र दाखिल है। कब्र में क्या होता है मिट्टी ही मिट्टी होती है, सारी दुनिया देह अभिमान की मिट्टी में दबी पड़ी है। भगवान बाप आते हैं वो आकर के परिचय देते हैं, तुम देह रूपी मिट्टी नहीं हो, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। यही मुर्दे को जिंदा करने का तरीका है, बाकी कोई मुर्दे को जिंदा करने की बात नहीं है। तुम मुझे बुलाते ही हो, भक्ति मार्ग में किस लिए बुलाते रहे? ये पतित पावन बाप आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। बाकी ऐसे भी नहीं कि आऊंगा तो रास्ता बताकर चला जाऊंगा और बाद में तुम पति से पावन बनते रहेंगे अपने आप। नहीं, ना अपने आप कोई पावन देवता से पतित बना है मनुष्य, और ना कोई पतित से पावन बन सकता है सिवाय परमपिता परमात्मा के संग के रंग लगे। बाप आते हैं पहले अपनी पहचान देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान के आधार पर, पहचान के आधार पर तुम बाप को याद करते हो। जो जितना याद करते हैं उतना पवित्र बनते हैं। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है वो काम कटारी चलाने वाले बड़े कसाई हैं। ये काम विकार बहुत दुख देने वाला है, इसलिए बाप कहते हैं इस मुख्य विकार को जीतो। और तुम तो कल्प कल्प जीतते हो, वो इस्लाम धर्मखंड के वासी क्रिश्चियन धर्मखंड के वासी नहीं जीतते हैं, बौद्ध धर्मखंड के वासी नहीं जीतते हैं, तुम ही काम विकार को जीतते हो। तुम पक्के भारतवासी हो, तुम ही राम राज्य स्थापन करते हो। राम राज्य स्थापन करते हो, राम राम राज्य स्थापन नहीं करता है? अरे राम भी अपने को राम तब समझता है जब निराकार राम उसमें प्रवेश करता है। तुमको भी बाप का परिचय मिलता है, वेद के दो बाप हैं, आत्मा का बाप और मनुष्य शरीरों का बाप। मनुष्य शरीरों के बाप में वो निराकार बाप मुकर रूप से प्रवेश करते हैं तो तुमको पता चलता है। ये राम बाप है और ये कृष्ण बच्चा है। मनुष्य सृष्टि का आदि पत्ता कौन है और मनुष्य सृष्टि का बीज बाप कौन है, इसकी तुमको पहचान होती। जिनको दोनों की पहचान हो जाएगी वो पत्ते को फॉलो करेगा या बीज को फॉलो करेगा? बीज को फॉलो करेगा। और मनुष्य गुरुओं ने भी गीता में लिखा हुआ है, हम बीज प्रदा पिता, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। तो तुमको भी पिता की पहचान होती है, जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो भी अपनी पहचान धारण करता है और उस एक को फॉलो करके तुम राम राज्य स्थापन करते हो। तो तुमको कितना नशा होना चाहिए इस बात का कि दुनिया राम बाप को नहीं पहचान पाती और हम राम बाप को पहचान करके राम राज्य स्थापन करते हैं। नहीं तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम चला, कितने वर्ष संग्राम करते रहे, गांधी जी को फॉलो किया, गांधी जी कहते थे राम राज्य लावेंगे और ये राम राज्य के बदले क्या स्थापन हो गया, रावण राज्य स्थापन हो गया। बाप कहते हैं तुमको कितना नशा होना चाहिए, गाते भी हैं संग तारे कुसंग बोरे, राम का संग तारे और रावण का संग बोरे, बोरे माना डुबोए देता है, रावण को अनेक सिर दिखाते हैं, एक को नहीं पहचाना तो अनेक गुरुओं के पीछे पड़ते हैं, एक एक रास्ता बताता है, दूसरा दूसरा रास्ता बताता है, तीसरा तीसरा रास्ता बताता है, तुंडे तुंडे में फिर भिन्ना हो जाती है। अब राम बाप को तो एक ही शीश दिखाया जाता है, माना व्याप एक रास्ता बताते, उसके लिए आकर के पहले अपनी पहचान देते हैं, बाप की पहचान हमको मिलती है। तो पता चलता है कि सत्य बाप एक ही है इस दुनिया में, इसकी यादगार में भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, एक सत्यनारायण की ही कथा गाई जाती है, या 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता है जिसके घर घर में कथा गाई जाती है, एक ही सत्यनारायण है, नारायण के साथ रहने वाली सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं, वो भी झूठी साबित हो जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारी दुनिया झूठी साबित होती है, कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सच्चा है और ट्रुथ इज गॉड, सच्चा ही भगवान है, जो 100% सच्चा है वो ही भगवान है, ऐसे सच्चे के साथ संग करने से तारे माने पार हो जावेंगे, कुसंग अर्थात झूठों का संग करने से इस विषय वैतरणी दुनिया कहो विषय सागर कहो डूब मरेगी, संग रावण का है, सत्संग राम बाप का है, राम बाप एक है और रावण अनेक सिर वाला है, और राम वो नहीं उसकी सीता चोरी हो गई है, इस राम की सीता चोरी हो गई, वो हमारी रक्षा करेगा है? जरूर उसका पुरुषार्थ अधूरा होगा। शूला कला संपूर्ण नहीं बना होगा। भगवान बाप आते हैं तो नरको नारायण शूला कला संपूर्ण बनाते हैं। अब सीता चोरी हो गई वो तो भक्ति मार्ग की बात है, परंतु उन भक्ति मार्ग की बातों का फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगमी की दुनिया में ही सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है। कहते हैं ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य, उल्टा नहीं कहते हैं, वैराग्य भक्ति ज्ञान या भक्ति वैराग ज्ञान, क्या कहते हैं? ज्ञान भक्ति वैराग। क्यों? कि भगवान आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता जाता है उनको भक्ति मार्ग की बातों से वैराग आता जाता है। अगर भक्ति मार्ग की बातों से कर्मकांडों से वैराग नहीं आता तो समझो उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गई, और भक्ति से वैराग मना सारी पुरानी दुनिया से वैराग। इन आंखों से तुम जो भी देखते हो ये आंखें विनाशी हैं या अविनाशी? विनाशी आंखों से तुम जो भी देखते हो उन सब का विनाश होने वाला है। जब बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि 100 साल से पहले इस दुनिया के विनाश के सामान नहीं तैयार हुआ था, 70 साल पहले विनाश का सामान तैयार होने लगा, साफ को पता चल गया कि दुनिया को ध्वंस करने वाला बारूद तैयार हो गया। परंतु ये किसी किसी को पता चलता है कि दुनिया का ध्वंस होने से पहले इस दुनिया का जो रचयिता बाप है वो नई दुनिया रचने के लिए आ जाता है। आज से 70 साल पहले नई दुनिया का रचयिता बाप भी इस सृष्टि पर आया और विनाश की सामग्री भी तैयार होने लगी। बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, इन आंखों से जो भी हम देखते हैं माया का पाम्प एंड शो है, थोड़े समय का नजारा है। ये ऊंची ऊंची महलमाणियां अटारियां मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग जो देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पर थोड़े टाइम के अंदर ये सब कलाश होने वाली है। तो इन विनाशी आंखों से जो भी देखते हो वो सब खलास होने वाला है। अगर ये पक्का बुद्धि में बैठ जाए तो वैराग आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। अभी नाटक पूरा हुआ, वो हद के नाटक होते हैं, पूरा होता है जो भी नाटककार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, नाटक पूरा होने के बाद कहाँ जाते हैं? अपने अपने घर जाते हैं। और नाटक देखने वाले भी अपने अपने घर जाते हैं। तो ये जो बड़ा ड्रामा है इस दुनिया का, इसका डायरेक्टर पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। कोई कोई ने विरासी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो कोई आकर के बैठ गया, बैठ जाए कि चलो भगवान बाप को देखे हैं, तो इन आंखों से दिखाई देगा क्या? दिखाई नहीं देता है, वो पर्दे के पीछे रहने वाला है। तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से, बुद्धि रूपी नेत्र से ही उस बाप को पहचाना जाता है। वो डायरेक्टर अब इस सृष्टि पर आया हुआ है। जो नंबरवार एक्टर्स हैं वो अपना पार्ट बजाए, और जो भी षष्ठ रूपी रंगमंच के एक्टर्स हैं 500-700 करोड़, आगे पीछे सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। पार्ट पूरा होगा और 5-7 रोज में एटमिक एनर्जी के द्वारा ऐसे दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो समझो अभी नाटक पूरा हुआ। अब हम जाते हैं अपने घर। कौन? हम आत्म हैं, शरीर नहीं जावेंगे। शरीर तो जड़ है, विनाशी है, ये दुनिया ही विनाशी है, परंतु आत्माएं अविनाशी है। अविनाशी आत्माएं अपने अविनाशी धाम वापस जावेगी। बाप भी कहते हैं अब अपने घर को याद करो। अभी ये पुराने कपड़े हो गए, कपड़े माना ये शरीर रूपी वस्त्र सब पुराने हो गए। मंदिरों में देवताओं के चित्र कितने सलों ने बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कहते हैं कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद, कमल फूल से उपमा देते हैं। सब फूलों में बड़ा फूल होता है कमल का फूल। इतना शोभनीक भी होता है, किंग फ्लावर कहा जाता है। इतना सुंदर तुम्हारा चोला था, अभी देखो कैसा पुराना शरीर हो गया। कोई का पेट बड़ा, कोई की आंखें अंदर घुसी हुई, कैसे कैसे कार्टून बनते जाते हैं मनुष्य। हम बच्चों को अंदर में आना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अब अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। काई की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग का नाम लेने से ही मुंह में पानी आ जाना चाहिए, परंतु स्वर्ग कैसे बनता है? ये दुनिया नरक है या स्वर्ग है? नरक है। नरक की दुनिया में सब नारकीय कीड़े पतित ही होंगे या कोई पावन होगा, सब पतित है। सुप्रीम सोल बाप इस मुकर्रर रथ में आता है, वो रथ भी पावन कहेंगे या पतित कहेंगे? पतितन में आता हूँ, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा कमल फूल बनाता हूँ। तो नरक की दुनिया में सब पतित है। अब पतितों की दुनिया पावन कैसे बनेगी? नाम तो रख दिया स्वर्ग, जैसा नाम वैसा काम भी करना पड़े। क्या काम करेंगे काम करेंगे स्व माने आत्मा और गा माने गया। कौन सी स्थिति में गया? आत्म की स्थिति में गया तो स्वर्ग में गया। देवान को छोड़ना है और आत्माभिमानी होकर रहना है। तो हम अपने लिए कर रहे हैं, कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। इतना आत्म की स्थिति में रहेंगे, जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। जितना यहाँ बाप के आने पर संगम युग में दूसरों को देवान दिखाएंगे ज्ञान लेने के बाद, उतना अपने लिए दुख की दुनिया रचेंगे या सुख की दुनिया बनेगी? सुख की दुनिया बनती जाएगी। अभी भगवान बाप आकर के रास्ता बताते हैं कैसे आत्मा सुख की दुनिया में जाती है और कैसे दुख की दुनिया में जाती है। स्वर्ग की स्थापना करने के लिए कोई हिंसा की बात नहीं है क्या? वो राजाएं होते हैं, अपनी राजाई स्थापन करने के लिए दूसरे के राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इतनी हिंसा होती है, ये हिंसक लड़ाइयां करते करते दुनिया नरक बनती जाती है। बाप ऐसी हिंसा करना नहीं सिखाते, बाप तो अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। अरे कोई ऋषि मुनि सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य कभी हिंसा करने की बात कहते हैं क्या? कोई नहीं कहते। तो जो भगवान है वो हिंसा करना कैसे सिखा देगा? परंतु रामायण में देखो, महाभारत में देखो, गीता में देखो, हिंसा की बातें ही दिखती। भगवान को भी हिंसक बनाई दिए, कहते सबके गले काट देते। परंतु गला काटने का अर्थ क्या है वो जानते ही नहीं। गला काटना माना आत्मा रूपी जो सिर है वो अलग हो जाए और धड़ अलग हो जाए, देह अलग और आत्मा अलग। ऐसी स्टेज हमको जीते जी धारण करनी है। इतनी आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस पक्की हो जाए कि आत्मा अलग महसूस हो और ये पांच तत्वों का सड़ा हुआ शरीर अलग महसूस हो। तो बाप अहिंसक युद्ध सिखाते हैं, देवताओं को कहा ही जाता है अहिंसा परमो धर्म। सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक, उनके जीवन में हिंसा की कोई बात ही नहीं होती। इस दुनिया में तो देखो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, इतने तो अत्याचारी होते हैं कि कसाईयों की तरह हड्डियां भी तोड़ देते हैं। बाप समझाते हैं ये गोश्त खाना बंद करो, पावन बनने बगैर काम वापस नहीं जा सके। और ये भी पक्का है कि बाप आए हैं तो और धर्म पिताओं की तरह, विद्वान पंडिताचार्यों की तरह, ऋषि मुनियों की तरह गाल बजा करके नहीं चले जाते हैं। पक्का कर लो कि हैविन बना करके ही जावेंगे। तो अभी पूरी पढ़ाई पढ़नी है, इस पढ़ाई का फल नई दुनिया में मिलना है। पहले तुम भी भक्त थे, अभी एक बाप से ज्ञान लेते हो, क्योंकि जानते हो वो एक से आता है ज्ञान और अनेकों से आता है अज्ञान अर्थात भक्ति। अगर अभी भी अनेकों से ज्ञान लेते रहे, अनेकों से सुनते रहे, तो भक्ति कहेंगे या ज्ञान कहेंगे? भक्ति से दुर्गति हो जाएगी। ये तो सत्यनारायण की कथा है, जो सत्यनारायण के अंतिम जन्म में बाप आकर सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। इसको तीजरी की कथा कहो अर्थात तीसरा नेत्र खुलने की कथा कहो। तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। बाबा अभी तुम बच्चों को नंबर वार ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। नंबर वार दे रहे हैं या कि बच्चे नंबर वार ज्ञान उठाए रहे हैं? नंबर वार उठाए रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि तीसरा नेत्र मिल गया बस। तीसरा नेत्र मिलने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ क्या करना है? तीसरा नेत्र लेने के साथ साथ पावन बनने का भी पुरुषार्थ करना है। अगर पतित बन गए तो निशानी क्या दिखाई देगी? ज्ञान में चलते चलते अगर पतित कोई बनता है तो क्या निशानी दिखाई देगी? है? अगर पतित बना फिर मुख से ज्ञान निकलेगा नहीं क्या? ज्ञान तो आकर बाप देते हैं, परंतु जो पतित बनते रहते हैं उनके मुख से ज्ञान की बात निकल नहीं सकती। ये काम महाशत्रु है। जो खुद देहाभिमानी में मरते रहते हैं वो दूसरों को कैसे सिखावेंगे कि अपन को आत्मा समझो देह न समझो, देह को न देखो। ये भी जानते हो कि तुम पवित्र ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जावेगा क्या? पवित्र झाड़ बनेगा उसकी निशानी बताई क्या? पवित्रता माने प्योरिटी। इस संगठन में प्योरिटी होगी तो यूनिटी बढ़ेगी, संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि प्योरिटी धारण की हुई। परंतु अगर इम्प्योरिटी आ गई तो संगठन का विनाश भी होता रहेगा। जैसे संक्षेप्तर के लिए घोषणा की 66 में कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास होगी और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, तो क्या बाहर की दुनिया के लिए बोला था? कहां के लिए बोला था? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया के लिए ही बोला था कि 76 में बाप जब प्रत्यक्ष होते हैं तो नए ब्राह्मणों के संगठन की स्थापना करते हैं और ब्राह्मणों का तमोप्रधान पुराना संगठन विनाश को पाता है। चाहे वो बड़े बड़े सेंटर ही क्यों न हो, अगर इम्प्योरिटी आती जाएगी तो उनका विनाश हो जाएगा। चाहे छोटी गीता पाठशालाएं हो, छोटे सेंटर हो, जितनी जितनी पवित्रता होगी उतना स्थायी रहेगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु। तुम जानते हो कि अभी तुम फूलों का सैंपलिंग लगाए रहे हो, फूलों से खुशबू आती है ना, दिव्य गुणों की खुशबुएं हैं। परंतु जो जंगली आदमी होते हैं वो फिर जंगल का सैंपलिंग लगाते हैं, कांटों के जंगल बनाते रहते हैं। कैसे? यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हैं, जो मुख से ज्ञान तो सुनाते हैं परंतु आंखों से देह को देखते हैं। देह अभिमान के वाइब्रेशन छोड़ते हैं तो कांटों की दुनिया बनेगी या फूलों की दुनिया बनेगी? कांटों की दुनिया बन जाती है। Oh.